परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक होंगे और प्रतिदिन की तरह आज भी इस बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने उत्पत्ति की पुस्तक के 38 अध्याय से अध्ययन किया था, जिसमें हमने यहूदा के पाप और यीशु मसीह का यहूदा और तामार के वंश से आने के बारे में देखा था। और आज हम उत्पत्ति की पुस्तक के 39 अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे और इस अध्ययन में हम यूसुफ और पोतीफर के घर में निरीक्षक होना और उसकी पत्नी के द्वारा परीक्षा में पड़ना और छुटकारा पाना, तब यूसुफ को बंदीगृह में डालना आदि विषयों पर विचार करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस अध्ययन को न छोड़ें। आपको यूसुफ के जीवन से बहुत आशीषमय बातें सीखने को मिलेंगी। मित्रों, अब हम फिर से एक छोटे से अंतराल के बाद पुनः यूसुफ की कहानी की ओर लौटते हैं। अध्याय 38 में हमने यह पाया है कि वह अध्याय सबसे घृणित अध्याय था जो हमें बाइबल में मिलता है, क्योंकि यह अध्याय हमें यहूदा के घृणित कहानी को बताता है। मित्रों, हम इस बात को खोज निकालेंगे कि यूसुफ यहूदा से बिल्कुल भिन्न है। मैंने हमेशा ऐसा महसूस किया है कि यूसुफ और बिन्यामीन को बहुत अधिक शिक्षा, निर्देश और व्यक्तिगत ध्यान मिला, जबकि अन्य 10 भाइयों को ये सब कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इससे ऐसा लगता है कि याकूब सिर्फ इन्हीं 2 पुत्रों में रुचि रखता था और यूसुफ के भाइयों की नफरत और वैर भाव के कारण वह गुलाम के लिए बेचा गया और उसे मिस्र देश में ले जाया गया। मित्रों, उसे विदेश में रहने के लिए एक गुलाम के रूप में बेचा गया, जो एक 17 साल के लड़के के लिए बहुत ही उदासपूर्ण बात थी। उसके हृदय को उत्साह देने के लिए बाहर से कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो इसे निश्चित रूप से उत्साह या हिम्मत दे सके। ऐसे लगता है कि यूसुफ कहीं न कहीं किस्मत का मारा हुआ लड़का है। यहाँ तक कि मिस्र देश में भी जब सब कुछ ठीक लगने लगता है तो कुछ न कुछ हो ही जाता है। लेकिन यह बात सच है कि जो भी होता है हमेशा एक उद्देश्य के लिए ही होता है, यद्यपि वह यूसुफ को बहुत कठिन लग रहा था या दिख रहा था। मित्रों, पुराने नियम में ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य यूसुफ की तरह स्पष्ट है। परमेश्वर का पूर्व प्रबंध उसके जीवन के हर क्षण में स्पष्ट झलकता है। परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है और परमेश्वर के अगुवाई का प्रमाण भी है। लेकिन यूसुफ ही एक पूर्वज है जिस पर परमेश्वर सीधे रूप में प्रकट नहीं हुआ या परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया। जैसा कि हम पवित्र शास्त्र में पाते भी हैं, परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिया लेकिन यूसुफ को नहीं दिया। फिर भी दूसरों से अधिक यूसुफ के जीवन में परमेश्वर का निर्देश और मार्गदर्शन बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। वह पुराने नियम का एक अच्छा उदाहरण है जो रोमियो की पत्री उसके 8:28 में है, जहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि यूसुफ ने स्वयं इसे उत्साही भाषा में स्पष्ट किया है। यूसुफ के भाइयों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके पिता की मृत्यु के बाद यूसुफ उनके विरोध में हो जाएगा, इसलिए वे उसके पास दया की भीख मांगने आए। उसने उन्हें बताया कि वह उनसे उनके प्रति कोई भी ईर्ष्या नहीं रखता है, और उसने कहा, उत्पत्ति 50:20 में, तुमने तो मेरे साथ बुराई करने की ठानी थी, परंतु परमेश्वर ने उसी को भलाई के लिए ले लिया, जैसा कि आज के दिन हो रहा है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। यद्यपि ऐसा लग रहा था कि उसके लिए सब कुछ गलत होता जा रहा है और बाहरी रूप से भी सब अंधेरा ही था जो भयानक लग रहा था, और हर एक घटना फल परीक्षण के पास लाने के कदम थे जो इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य थे। मेरे प्रिय मित्रों, हमें अपने जीवन में इस सत्य को समझना है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। इस पद को हम इब्रानियों के पत्री 12:6 देख सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की संतान हैं और हम उसकी इच्छा में हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक आश्वासन हो सकता है कि कोई बातें उसके बिना अनुमति के नहीं हो सकती। परमेश्वर उनके लिए सब कार्य भलाई के लिए करता है जो उससे प्रेम रखते हैं। यहां तक कि हमारी विपत्ति, अत्यंत दुखित होना और हमारे कष्टों का सहना हमारे ही भलाई के लिए और उसकी महिमा के लिए होता है। मित्रों, परमेश्वर की प्रत्येक संतान के चारों ओर एक घेरा है और परमेश्वर की अनुमति के बिना उसमें कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। शायद आपको याद होगा कि जब शैतान अय्यूब की परीक्षा लेना चाहता था, तब उसने परमेश्वर से कहा, जिसे हम अय्यूब की पुस्तक उसके 1:10 में पढ़ते हैं, लिखा है, क्या तूने उसके तथा उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांध रखा है? तूने उसके हाथों के काम पर आशीष दी है और देश में उसकी संपत्ति बढ़ गई है। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि वह बाड़ा खोल दे। यहां तक कि यदि शैतान परमेश्वर से हमारी परीक्षा लेने के लिए अनुमति लेता है तो भी यह हमारी ही भलाई को उत्पन्न करेगी। डॉक्टर टोरे रोमियो की पत्री 8:28 को एक दुखित और थके हुए हृदय के लोगों के लिए नरम तकिया कहते हैं, और किसी ने इस प्रकार से कहा है, परमेश्वर कुछ नहीं करता, ना ही पूरा होने के लिए कष्ट उठाता है, परंतु हम अपने में क्या हैं? यदि हम सभी घटनाओं को उसी की दृष्टि से देखें जिससे वह देखता है तो सब ठीक है। मित्रों, यूसुफ के जीवन का एक दूसरा पहलू है जो प्रत्येक परमेश्वर की संतान के लिए एक उत्साह का विषय है। परमेश्वर के संतानों में से अभी तक किसी को भी सीधे परमेश्वर का दर्शन या प्रकाशन नहीं मिला था। कुछ आधुनिक और झूठे भविष्यवक्ता इसका खंडन करते हैं, परंतु परमेश्वर ने आज तक किसी को भी सीधे यानी आमने सामने दर्शन नहीं दिया है। मित्रों, यह हमारे उत्साह के लिए है कि परमेश्वर यीशु को आमने सामने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि हम इससे जान सकते हैं कि वह अभी भी हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए हम इस जवान यीशु का अनुकरण करें और देखें कि उसे क्या होने जा रहा है। सबसे पहले हम उसे पोतीपर के घर का अधिकारी बनते हुए देखते हैं, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसके पहले पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब यूसुफ मिस्र पहुंचाया जा चुका था और पोतीपर नामक फिरौन के एक मिस्री अधिकारी और अंगरक्षकों के प्रधान ने उसे उन इस्माइलियों के हाथ से मोल ले लिया जो उसे वहां ले गए थे। यह 17 साल का एक सुंदर दिखने वाला नवयुवक का दाम बाजार में एक दास के रूप में अच्छा था और वह अंगरक्षकों के प्रधान के द्वारा खरीदा गया, जिसका नाम पोतीपर था। पोतीपर सेना में नियुक्त था और उसका दफ्तर या कार्यालय उन दिनों के पंचभुज में था और वह पीतल वाद्य का एक सदस्य भी था जो एक प्रचलित अधिकारी था। मित्रों, हम उत्पत्ति उसके 39 अध्याय और उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा यूसुफ के संग था, इसलिए वह एक सफल पुरुष हो गया। वह अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। मित्रों, शीघ्र ही यूसुफ पोतीफर के घर में जाता है जो फिरौन का एक अधिकारी है। तो यह सच है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ है, और जब यीशु पोतीपर के घर में आया तो उस घर में परमेश्वर की आशीष भी आई। हम आगे उत्पत्ति 39 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जब उसके स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके साथ है और जो भी काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। मित्रों, अभी तक जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। हो सकता है कि आप इसमें जोड़ना पसंद करेंगे कि इसके बाद भी वे खुशी से रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह कोई कहानी नहीं है, परंतु यह एक हकीकत है, एक सच्चाई है। परमेश्वर की संतान इस संसार में परीक्षा, कठिनाई और समस्या का सामना करने जा रहे हैं, और यही बात यूसुफ के साथ भी होने जा रहा है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39 अध्याय और उसके 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तो उसने यूसुफ पर कृपा दृष्टि करके उसे अपना निजी सेवक बनाया। उसने उसे अपने घर का सर्वे सर्वा ठहरा कर अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। मित्रों, यहाँ पर जरा सोचिए कि जिस तरह से यूसुफ ने काम किया, उससे उसे उन्नत किया गया और सब वस्तु और पदार्थ की देखभाल का पद उसे सौंपा गया। संभवतः उसे पोतीफर के चल संपत्ति और भू संपत्ति का भी अधिकारी ठहराया। पोतीफर ने यूसुफ पर सब तरीके से विश्वास किया। तब हम उत्पत्ति 39 अध्याय उसके 5 और 6 पद को पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर ऐसा हुआ कि जब से उसने उसे अपने घर और अपनी सब संपत्ति का सर्वे सर्वा ठहराया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। इस प्रकार उसकी सब वस्तुओं पर जो उसके घर में और मैदान में थी यहोवा की आशीष होने लगी। अतः उसने अपना सर्वस्व यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो भोजन वह खाता था उसे छोड़ अपनी किसी अन्य वस्तु के विषय कुछ नहीं जानता था। यूसुफ तो देखने में सुंदर और रूपवान था। मित्रों, हम देखते हैं कि पोतीफर ने यूसुफ पर बहुत अधिक भरोसा रखा और यहाँ तक कि उसने कभी भी उसके हिसाब किताब का कोई लेखा नहीं लिया और न ही कोई हिसाब चेक किया। वह इस जवान व्यक्ति की ईमानदारी पर विश्वास करता था। पोतीफर को सिर्फ एक बात की चिंता रहती थी कि वह फिरौन का एक अधिकारी है और कैसे अच्छा काम करे कि वह फिरौन को खुश रख सके। उसने यूसुफ को अपने घर का सारा कामकाज सौंप दिया। जब वह अपने घर खाने की मेज पर बैठता था तो उसे खाना परोसा जाता था। वह सिर्फ इतना ही जानता था और बाकी सब कार्य के प्रति वह इस जवान पर भरोसा रखता था। मित्रों, आगे हम देखते हैं कि पोतीफर की पत्नी के द्वारा यूसुफ का परीक्षा में पड़ना और उस पर आरोप का लगना। अब यहां पर ध्यान दें कि क्या होता है। उत्पत्ति 39 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने कामुकता की दृष्टि यूसुफ पर लगाई और उससे कहा, मेरे साथ लेट। यहां पर ध्यान दें कि पोतीफर ने यूसुफ को घर चलाने का पूरा अधिकार दे दिया था और यूसुफ व्यस्त था तो पोतीफर की पत्नी भी व्यस्त थी। वह योजना बनाने में व्यस्त थी क्योंकि यूसुफ एक जवान और रूपवान व्यक्ति था। हो सकता है कि पोतीफर एक बूढ़ा व्यक्ति रहा हो, क्योंकि उन दिनों में यह एक प्रथा थी कि बूढ़े व्यक्ति की पत्नी जवान होती थी। इसलिए जब वह यूसुफ को देखती है तो उसे पाने की कोशिश करती है, अर्थात प्रलोभन देती है। तब हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39 अध्याय उसके 8 और 9 पद में पढ़ते हैं। परंतु उसने इनकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, देख मेरा स्वामी इन सब बातों के विषय कुछ नहीं जानता कि इस घर में क्या क्या है, और जो कुछ उसका है वह सब उसने मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा और कोई नहीं। उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है कोई अन्य वस्तु मुझसे नहीं रख छोड़ी है। तब मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के विरोध में कैसे पाप कर सकता हूँ? क्या अब आप इस बात की ओर ध्यान दे रहे हैं कि यह जवान अभी तक परमेश्वर की सेवा कर रहा है? जब वह मिस्र देश में गया तो वह पूरा देश मूर्ति पूजकों से भरा हुआ था, जैसे कि बाबोल देश भी है। ऐसे देश में यूसुफ ने जीवित और सच्चे परमेश्वर के प्रति अपनी गवाही रखी और अपना नैतिक जीवन का स्तर भी बनाए रखा। जब पोतीपर की पत्नी उसे प्रलोभन दे रही थी तो उसने कहा, मेरे स्वामी ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है परंतु तू उसकी पत्नी है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि विवाह के प्रति यूसुफ के विचार कितने उच्च हैं। मित्रों, आप देखते हैं कि परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए विवाह को ठहराया है। मेरे प्रिय मित्र, जब कोई व्यक्ति विवाह के बंधन का तिरस्कार करना आरंभ करता है तो वह परमेश्वर का तिरस्कार करना आरंभ करता है। एक व्यक्ति जो विवाह के बंधन को तोड़ता है तो वह कोई भी प्रतिज्ञा को तोड़ सकता है जिसे उसने परमेश्वर से की है। मैंने अपने सेवकाई में एक मजेदार बात देखी है कि किसी व्यक्ति का तलाक इसलिए हुआ है क्योंकि पति या पत्नी विश्वास योग्य नहीं है, इसलिए वे परमेश्वर से उतना ही दूर चले जाते हैं जितना कि वे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा होते हुए मैंने कई बार देखा है। यूसुफ यहाँ पर परमेश्वर के प्रति सही और सत्य बने रहने का प्रयत्न कर रहा है। यह कितना उच्च विचार उसके पास है। फिर भी आप देखिए कि आगे उसके साथ क्या होने जा रहा है, क्योंकि वह एक सच्चे परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश कर रहा है। आगे हम उत्पत्ति 39 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ को मनाती रही, पर उसने उसके साथ लेटना या उसके संग रहना स्वीकार नहीं किया। मित्रों, यह व्यक्ति पोतीफर जो फिरौन का एक अधिकारी था प्रतिदिन अपने काम के लिए घर से बाहर या दूर रहता था, और हो सकता है कि वह अपने घर से बहुत अधिक समय तक बाहर रहता था। और इस महिला ने यूसुफ को सिर्फ एक बार ही प्रलोभन में डालने की कोशिश नहीं की, परंतु वह बार बार उसे प्रलोभन देती रही। उसके लिए यह परीक्षा या प्रलोभन हमेशा रहा, फिर भी वह इसमें नहीं गिरा। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं कि वहां उसके मन में यूसुफ के विरोध में रोष या क्रोध पनप रहा था। नरक में भी उतनी क्रोधांगनी नहीं है जितनी कि एक औरत तिरस्कार या घृणा रखती है। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए कि वह यूसुफ से बदला लेने जा रही है। हम आगे पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39 अध्याय और उसके 11-14 पद में। तब एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर के अंदर गया और घर का अन्य कोई व्यक्ति अंदर नहीं था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ लेट, परंतु वह अपना वस्त्र उसके हाथ ही में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। जब उसने देखा कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया है तो उसने अपने घर के सेवकों को बुलवाया और उनसे कहा, देखो वह हमारी हंसी उड़ाने के लिए एक इब्री को हमारे पास ले आया है, वह तो मेरे साथ लेटने के लिए अंदर आया था। तब मैं चिल्ला उठी। मित्रों, इस वचन के अनुसार ऐसा लगता है कि पोतीफर और उसकी पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि वह किस प्रकार से अपने पति के बारे में बात करती है, जो एक अपमानजनक तरीका था। वह कहती है कि वह एक इब्री को हमारी हंसी उड़ाने के लिए ले आया है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह संभवतः इससे पहले भी इस विषय में दोषी रही होगी। जिस व्यक्ति के लिए मैं अधिक दुखी होता हूँ वह पोतीफर है। यदि कोई थकित व्यक्ति था तो वह पोतीफर था। संभवतः इसके साथ साथ उसने और कुछ बातों के विषय में भी संदेह किया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि उसकी पत्नी उसके चिन्ह को मिटाना और छिपाना आरंभ कर रही है। हम उत्पत्ति 39 अध्याय के 15 और 16 पद में पढ़ते हैं। जब उसने मुझे ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए सुना तो वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और वह बाहर निकल गया। अतः वह उसका वस्त्र अपने स्वामी के आने तक अपने पास रखे रही। मित्रों, यहाँ पर एक लड़का यूसुफ जो अपनी किशोर अवस्था अपने घर से दूर मिस्र देश में अकेला है और उसे बड़े भयंकर तरीके से फंसाया जा रहा है। वह दूसरे व्यक्तियों के सामने यूसुफ के विरोध में दोष लगाती है। उसका पति घर से दूर था, इसलिए उसके पास ये सारी कहानियां थी कि जब वह लौटे तो उसे बता सके। हम उत्पत्ति 39 अध्याय उसके 17 से 19 पद में आगे पढ़ते हैं। तब उसने उससे इन शब्दों में बातें की, वह इब्री दास जिसे तू हमारे पास ले आया था वह मुझसे क्रीड़ा करने के लिए मेरे पास आया था, और जैसे ही मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी वह मेरे पास अपना वस्त्र छोड़कर बाहर भाग गया। जब उसके स्वामी ने अपनी पत्नी की ये बातें सुनी, तेरे दास ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तब उसका क्रोध भड़क उठा। मित्रों, ऐसा लगता है कि बाहरी रूप से पोतीफर उसकी कहानी पर विश्वास करता है और कम से कम उस क्षण के लिए वह क्रोधित होता है। वह फिरौन की सेना में एक अधिकारी था, तो यह निश्चय है कि वह उस समूह में एक तेज व्यक्ति रहा होगा, लेकिन निश्चय ही वह एक मूर्ख पति था। मित्रों, यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसने अपनी पत्नी को समझ लिया था कि वह किस तरह की है और सोचा कि यह उचित है कि यूसुफ को जेल खाने में डलवा दे और सब बातों को भुला दे। ऐसी स्त्री के साथ पोतीफर का विवाह हुआ, इसलिए मुझे पोतीफर के लिए दुख होता है। मेरा यह मानना है कि यूसुफ से पहले भी वह कई बार अविश्वास योग्य थी और यह उसके विजय श्रृंखला की एक और कड़ी थी जो यूसुफ के साथ सफल नहीं हो सकी, इसलिए उसने उसे फंसाया। और आगे हम देखते हैं कि यूसुफ को जेल में डाल दिया गया और उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39 अध्याय उसके 20 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, और यूसुफ के स्वामी ने उसे पकड़कर उसी बंदीगृह में जहां राजा के कैदी थे बंद करवा दिया, अतः वह उस बंदीगृह में रहा। निश्चित तौर से इस लड़के का नसीब खराब था, है कि नहीं? घर में वह अपने पिता का सबसे दुलारा था जो रंग बिरंगा अंगरखा पहनता था। दूसरी बात, वह जो जानता था कि उसके भाइयों ने उसका अंगरखा उतार कर उसे गड्ढे में डाल दिया था। कुछ व्यापारियों के साथ अपने भाइयों को मोल तोल करते उसने सुना था, और उसके बाद उसे मिस्रियों के हाथ बेच दिया गया। वह मात्र 17 वर्ष का था, और मेरा मानना है कि वह रास्ते में और वहां पहुंचने के बाद भी कई रात तक वह अपने तकिए को आंसुओं से भिंगाता रहा, और निश्चित तौर से उसे अपने घर की बहुत याद आ रही थी। अब वह अपने इस नए पद के साथ बस घुल मिल ही रहा था जिसे थोड़े समय पहले ही उसे उन्नत किया गया था, क्योंकि वह सक्षम और सुंदर दिखने वाला एक जवान व्यक्ति था। तब पोतीफर की पत्नी उसे प्रलोभन देने की कोशिश करती है कि वह पाप करे, लेकिन उसका उच्च नैतिक जीवन उसे ऐसा करने से मना करता है, और परिणाम स्वरूप वह उसे एक जाल में या षड्यंत्र में फंसाती है। बेचारा लड़का उस अवसर पर खड़ा नहीं हो सका जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। मित्रों, हमें इस बात को याद रखने की आवश्यकता है कि यद्यपि ऊंचे पद पर उन्नत किया गया, परंतु वह एक गुलाम ही था। पोतीफर की पत्नी कैसर की पत्नी के जैसे ही थी। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके बारे में कुछ कहे, इसलिए उसके प्रत्येक शब्द को स्वीकार किया गया। बेचारा यूसुफ, उसे अपने मुंह खोलने की भी आवश्यकता नहीं हुई। इससे पहले कि वह अपने बचाव में कुछ कहे, उसे दोषी करार कर दिया गया, और वह तुरंत अपने आप को कैदखाने में पाता है जहां फिरौन राजा के कैदी भी रखे गए थे। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39 अध्याय और उसके 21 से 23 पद में आगे पढ़ते हैं। परंतु यहोवा यूसुफ के संग था, उसने उस पर अपनी करुणा की और उसे बंदीगृह के मुख्य दरोगा की दृष्टि में कृपा पात्र बनाया, और मुख्य दरोगा ने उस बंदीगृह के सब कैदियों को यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार जो कुछ वहां होता था वह सब उसी की आज्ञा के अनुसार होता था। मुख्य दरोगा जो यूसुफ के अधीन किए गए किसी भी काम को नहीं देखता था, क्योंकि यहोवा यूसुफ के संग था और जो कुछ भी वह करता था यहोवा उसमें उसे सफलता देता था। मित्रों, इस जवान के जीवन में परमेश्वर का हाथ स्पष्ट था, परंतु इसके विपरीत जो कुछ भी हुआ वह भयानक था। अब वह अपने आप को कैद खाने में पाता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह कितनी निराशपूर्ण बात रही होगी, परंतु मजेदार बात तो यह है कि परमेश्वर यूसुफ के संग था, यद्यपि उसने उसे दर्शन नहीं दिया जैसे अन्य पूर्वजों को उसने दिया था, लेकिन वह उसे अपनी दया देता रहा। सबसे पहले वह मुख्य दरोगा को उसे पसंद करवाता है और उस पर भरोसा उत्पन्न कराता है, जबकि यूसुफ स्वाभाविक तौर पर आकर्षक नवयुवक और गुणों से भरा हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है, यदि परमेश्वर उसके संग नहीं होते तो ये सब कुछ कोई काम का नहीं था। परमेश्वर उसके संग था और वह उसकी अगुवाई कर रहा था। ये सारे अनुभव उसके जीवन के उद्देश्य की उपलब्धि की ओर बढ़ा रहे थे। यूसुफ ने इन बातों को पहचाना और उन बातों ने उसे प्रफुल्लता प्रदान की जिसने आशावादी बना दिया। परिस्थितियां उसे हरा नहीं पाई, वह अपने परिस्थितियों के ऊपर रहा। मित्रों, मेरा एक मित्र है जो कहता है कि सारी परिस्थितियां मेरे ऊपर हैं। मैं सोचता हूं कि हम में से कई लोग इसी प्रकार का जीवन जीते हैं, परंतु यूसुफ था जो परिस्थितियों के ऊपर जीवन जी रहा था। परमेश्वर उसके संग था, उसने परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर महसूस किया, इसलिए वह निराश नहीं हुआ। निराशा शैतान का सबसे अच्छा हथियार है, विफलता और निराशा। ऐसा लगता है कि इस जवान ने सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर ली है, और वह हमें इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 11 पद को स्मरण दिलाते हैं, जहां पर लिखा है, सब प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए सुखदायी नहीं परंतु दुखदायी प्रतीत होती है, फिर भी जो इसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें बाद में धार्मिकता का शांतिदायक फल प्राप्त होता है। मित्रों, निश्चय ही परमेश्वर की ताड़ना इस जवान के जीवन में धार्मिकता का शांतिदायक फल उत्पन्न करने जा रही है। यूसुफ की कहानी हमें यह प्रकट करती है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कीमत नहीं है। शैतान कहता है कि वह करता है, परंतु बहुत से लोग हैं जिन्हें शैतान नहीं खरीद सका, और उनमें से एक यूसुफ था, दूसरा अय्यूब था, और प्रेरित पौलुस भी एक था। शैतान मानव जाति का तिरस्कार करता है, परंतु इन्हें और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शैतान नहीं खरीद सका। मित्रों, क्या यह परमेश्वर की इच्छा थी कि यूसुफ कैदखाने या बंदी गृह में डाला जाए? मैं समझता हूं कि यह लगभग अनिवार्य था कि यूसुफ वहां पर हो। मित्रों, हम इसे अगले अध्ययन में देखेंगे, क्योंकि अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। प्रभु आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।